नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मस्जिद का सर्वे करने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका को सुने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जारी रहेगी, लेकिन सर्वे पर अंतरिम रोक रहेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। बता दें कि 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट ने विवादित जमीन के सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को भी मंजूरी दे दी थी। हाईकोर्ट ने मथुरा मामले में भी वैसा ही सर्वे कराने का आदेश दिया था जैसा ज्ञानवापी मामले में दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हिंदू पक्ष की ओर से भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरी शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ASI सर्वे की मांग की थी। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि मस्जिद के नीचे भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, यहाँ इस बात के भी कई संकेत मौजूद हैं जो हिंदू मंदिर होने के सबूत देते हैं, इसके लिए मस्जिद का सर्वे किए जाने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन योजना में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत ED ने मंगलवार को राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस मामले में कुछ अफसरों पर भी कार्रवाई होने की संभावना है। पूर्व मंत्री महेश जोशी के अलावा जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग के 5 सीनियर अफसरों और कलेक्टर्स के घरों और दफ्तरों पर भी ईडी की टीम पहुँची है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक छापे राजधानी जयपुर और बांसवाड़ा जिले के अलग अलग घरों और दफ्तरों पर मारे जा रहे हैं। महेश जोशी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राजस्थान में जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना में अनियमितता और घोटालों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय लगातार एक्शन में है। राजस्थान समेत देश के अलग अलग हिस्सों में भी इसको लेकर पहले भी कई बार छापेमारी हो चुकी है। पिछले साल भी एजेंसी ने केंद्र सरकार की योजना से जुड़े इस मामले में कम से कम 2 बार छापेमारी की थी। उस दौरान भी कई अफसरों के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं की जानकारी मिली थी। राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जोशी को जयपुर के हवा महल सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने से इनकार कर दिया था। इससे पहले एजेंसी ने दावा किया था कि कई बिचौलियों और प्रॉपर्टी डीलर ने जल जीवन मिशन से अवैध रूप से अर्जित धन की हेराफेरी के लिए राजस्थान सरकार के PHE विभाग के अधिकारियों की मदद की थी। उसने ये भी आरोप लगाया कि जांच में पाया गया कि ठेकेदारों ने इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा जारी कथित फर्जी कार्य समापन प्रमाण पत्रों के आधार पर और PHE विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को रिश्वत देकर जल जीवन मिशन के कार्यों से संबंधित टेंडर्स हासिल किए थे। कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा ने 2 दिन पहले ही पार्टी का साथ छोड़ दिया था। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ज्वाइन किया है। अब मिलिंद देवड़ा ने बड़ा खुलासा किया है। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस छोड़ने से पहले उन्हें रोकने के लिए एक वरिष्ठ नेता का फोन आया था। मिलिंद देवड़ा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में बताया, मुझे जो एकमात्र कॉल आया वो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का था जिनका नाम मैं नहीं लूंगा। उन्होंने मुझसे भारत जोड़ो यात्रा के शुभारंभ के दिन ऐसा नहीं करने का अनुरोध किया। ये बिल्कुल हास्यास्पद था। इससे मेरा विश्वास और मजबूत हुआ कि मैं सही काम कर रहा था। राहुल गांधी से उम्मीद को लेकर मिलिंद देवड़ा ने कहा, मैं विशेष बातों में नहीं जाना चाहता। मैंने कांग्रेस के विभिन्न वर्ग के नेताओं से स्पष्ट रूप से कहा था कि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं मैं उससे खुश नहीं हूँ और पार्टी सहयोगियों के सामने आत्मसमर्पण कर रही है। परिवार को पहले स्थान पर इस गठबंधन को करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और मैं UBT के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की भावना को जानता हूँ। मिलिंद देवड़ा ने कहा, मुझे पूरी राजनीति मुंबई और देश की सेवा करने और उनके लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा के बारे में है। मैं लोगों को गाली देने और इसके लिए विरोध करने की राजनीति में नहीं हूं। मैंने हमेशा रचनात्मक सुझाव दिए हैं चाहे सत्ता में कोई भी हो। मैं ऐसी व्यवस्था में नहीं रह सकता जिसने रचनात्मक नीतियाँ बनाने की क्षमता खो दी है और जहाँ एकमात्र एजेंडा विरोध करना है। ये वो पार्टी नहीं है जिसमें मैं शामिल हुआ था। मुझे हमेशा उम्मीद थी कि रास्ते में कुछ सुधार होगा। मुझे लगता है कि मैं नेतृत्व को एक रचनात्मक एजेंडे की ओर बढ़ने के लिए मनाने में भी विफल रहा जो उसकी छवि को बेहतर बनाने में मदद करेगा ताकि लोग इसे विपक्ष को अधिक गंभीरता से लें। मैंने समझाने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर सका। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली की सभी विधानसभाओं में सुंदरकांड का आयोजन करेगी। आपके विधायक और पार्षद हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का आयोजन करेंगे। इस मामले को लेकर आप अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर हैं। वहीं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पलटवार किया है। दरअसल ओवैसी ने आपको RSS का छोटा रिचार्ज बताया था। इसके जवाब में राहुल चड्ढा ने कहा, मैं किसी नेता पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, जिसने कहा उसे मुबारक। अरविंद केजरीवाल प्रभु श्री राम के बड़े भक्त हैं, वो हर काम भगवान राम और हनुमान जी का नाम लेकर ही करते हैं। दरअसल आपके सुंदरकांड वाले फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, RSS का छोटा रिचार्ज ने फैसला लिया है कि दिल्ली की हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। ये फैसला 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से लिया गया। आपको याद दिला दूं कि ये लोगों ने बिल्किस बानो के मसले पर चुप्पी बनाई रखी थी और कहा था कि वो सिर्फ शिक्षा और सेहत जैसे मसलों पर बात करना चाहते हैं। क्या सुंदरकांड पाठ शिक्षा है या सेहत? असल बात तो यही है कि इन्हें इंसाफ से परहेज है, संघ के एजेंडे का पूरा साथ दे रहे हैं। हम बाबरी की बात भी ना करें, आप न्याय मोहब्बत फलाना का बाजा बजाते रहो और साथ में हिंदुत्व को मजबूत करते रहो, वाह। उन्होंने कहा, भाजपा RSS और आप में कोई अंतर नहीं है, ये सभी नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं। आज प्रतिस्पर्धी हिंदुत्व की राजनीति को अपनाया जा रहा है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।